ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार के 100 दिन पूरे, शासकीय सुधार के लिए निर्धारित 100 सूत्रीय कार्यसूची का 80% से अधिक क्रियान्वयन हो चुका है, सरकार के प्रवक्ता का कथन। सहकारी ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में कुछ कड़े प्रावधान शामिल करने पड़े हैं, सहकारी मंत्री प्रतिभा रावल ने किया स्पष्ट। और वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद 50,000 से अधिक लोग अभी भी लापता। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि अपने पहले 100 दिनों में सरकार गठन के समय घोषित शासकीय सुधार संबंधी 100 सूत्रीय कार्यसूची का 80% से अधिक क्रियान्वयन किया जा चुका है। सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सिंह दरबार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने बताया कि 100 सूत्रीय कार्यसूची में से 70 बिंदुओं का क्रियान्वयन हो चुका है। 17 बिंदुओं पर 80% से अधिक प्रगति हुई है, जबकि शेष 13 बिंदुओं पर 60% या उससे कम प्रगति दर्ज की गई है। सरकार ने गत 13 चैत को सरकार के कार्य संपादन को अधिक परिणाममुखी, प्रभावी और जवाबदेह बनाने तथा नागरिकों के जीवन में प्रत्यक्ष सुधार लाने के उद्देश्य से सुशासन सुधार संबंधी 100 सूत्रीय कार्यसूची साझा की थी। राष्ट्रीय सभा ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त संपत्ति शुद्धिकरण निवारण तीसरा संशोधन विधेयक 2083 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। बैठक में विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने कहा कि सरकार देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी प्रकार राष्ट्रीय सभा ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त सार्वजनिक खरीद दूसरा संशोधन विधेयक 2083 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह की ओर से प्रस्ताव पेश करते हुए कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सुविदा गौतम ने कहा कि सरकार ने आधारभूत संरचना निर्माण कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक खरीद दूसरा संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत किया है। इसी तरह राष्ट्रीय सभा ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त सहकारी पहला संशोधन विधेयक 2083 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। विधेयक पर हुई चर्चा में सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा कि सहकारी ऋण लेने वालों के प्रति सख्ती किए बिना जमाकर्ताओं की राशि लौटाना आसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार सहकारी ऋण की वसूली में कठोर नहीं होगी तो जमाकर्ताओं का पैसा वापस करना कठिन हो जाएगा। इसी कारण ऋण वसूली सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में कुछ कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंधी कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन करने संबंधी विधेयक 2083 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को भी राष्ट्रीय सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकृत की। बैठक में स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने कहा कि ये विधेयक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानों के पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आषाढ़ 22 गते सोमवार दोपहर 12:15 बजे के लिए बुलाई गई है। परराष्ट्र मंत्रालय अंतर्गत के पासपोर्ट विभाग इसी आषाढ़ महीने के 29 गते से पासपोर्ट सेवा को मौजूदा प्रणाली से नई प्रणाली में तब्दील करने की तैयारी में है। इस प्रयास के दौरान जिला इलाका प्रशासन कार्यालयों और विदेशों में स्थित नेपाली नियोगों से दी जाने वाली पासपोर्ट सेवा और विभाग से दी जाने वाली सेवाएं कुछ दिन बाधित रहेगी, ये जानकारी विभाग ने दी। सूचना के मुताबिक जिला इलाका प्रशासन कार्यालयों और विदेशों में स्थित नेपाली नियोगों से दी जाने वाली सेवाएं आषाढ़ 24 से 26 गते तक यानी 3 दिन बाधित रहेगी। इसी तरह विभाग से दी जाने वाली पासपोर्ट सेवा आषाढ़ 25 और 26 गते बंद रहेगी। वहीं आषाढ़ 29 गते नई प्रणाली के जरिए पासपोर्ट सेवा नियमित रूप से सुचारू रहेगी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिजियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को फोर जी
सबै को यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को फोर जी आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संविधान संशोधन बहस पत्र संबंधी प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को पेश करने की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार एवं संविधान संशोधन बहस पत्र तैयार करने के लिए गठित कार्यदल के संयोजक असीम शाह ने ये जानकारी दी। मौजूदा सरकार गठन होने के 100 दिनों में संपादित कामों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए आज प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयोजक शाह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी निकायों, संविधानविदों और राजनीतिक के साथ चर्चा के बाद अब प्रतिवेदन लेखन की स्थिति में आ चुके हैं। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा है कि अनेक प्रयासों के बाद भी पार्टी को नहीं बचाया जा सका। आज एमाले बागमती प्रदेश जागरण अभियान को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ओली ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि पार्टी और नेतृत्व पर बार बार चौतरफा हमले किए गए, उन्होंने कहा कि दो तिहाई बहुमत के आसपास पहुंच चुकी पार्टी को बचाने के लिए तमाम कोशिशें करने के बावजूद सफलता नहीं मिल सकी। गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने कहा है कि सीमा सुरक्षा और पुलिस के भौतिक पूर्वाधार सुधार पर सरकार केंद्रित है। आज विराटनगर विमानस्थल पर संचार कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान गृह मंत्री गुरुंग ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रहरी कार्यालयों के जीर्ण भवनों और भौतिक पूर्वाधार सुधार को सरकार ने प्राथमिकता में रखा है। दैलेह के चामुंडा बिंद्रा सैनी नगर पालिका 7 स्थित करनाली राजमार्ग पर हुई बस दुर्घटना के बाद लापता वाहन और यात्रियों की तलाश के लिए सशस्त्र पुलिस बल ने गोताखोरों की एक विशेष टीम तैनात की है। सशस्त्र पुलिस के अनुसार निरीक्षक प्रेम बहादुर तामांग के नेतृत्व में 4 सदस्यीय गोताखोर दल घटनास्थल पहुंचकर सोनार कैमरा और चुंबक सहित विशेष उपकरणों की मदद से करनाली नदी में तलाश अभियान चला रहे हैं। गत आषाढ़ 18 को सुरखेत से कालीकोट जा रही यात्री बस सड़क से लगभग 400 मीटर नीचे करनाली नदी में गिर गई थी। दुर्घटना के दिन घटनास्थल से करीब 400 मीटर नीचे एक पुरुष का शव बरामद किया गया था। बस और अन्य यात्रियों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। वैशाख 1 से 19 आषाढ़ यानी कल शुक्रवार तक देश भर में हुई विभिन्न आपदाओं में 127 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 773 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के अनुसार इस अवधि में 2721 आपदा जनित घटनाएं हुई, जिनसे 3722 परिवार प्रभावित हुए। प्राधिकरण की प्रवक्ता शांति महत के अनुसार बाढ़, भूस्खलन, भारी वर्षा, जंगल की आड़, हिमस्खलन और अन्य आपदाओं से भी जनधन की क्षति हुई है। पिछले 24 घंटों में 27 जिलों में 31 आपदा जनित घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें एक व्यक्ति की मृत्यु और 15 लोग घायल हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेनेजुएला में पिछले सप्ताह आए विनाशकारी दोहरे भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है, लेकिन अब भी 50,000 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में भारी तबाही के कारण हजारों लोगों का अब तक पता नहीं चल सका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 2,000 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 11,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक तबाही ला ग्वायरा और राजधानी काराकास के आसपास के इलाकों में हुई, जहां अनेक इमारतें ढह गई और हजारों लोग बेघर हो गए। मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए सेना, स्थानीय बचावकर्मी और अंतर्राष्ट्रीय राहत दल अभियान चला रहे हैं। हालांकि भारी मशीनों की कमी, क्षतिग्रस्त सड़कों और संचार व्यवस्था बाधित होने से राहत कार्य प्रभावित हो रहा है। बीच बीच में आ रहे झटकों के कारण बचाव अभियान भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के 100 दिन पूरे, शासकीय सुधार के लिए निर्धारित 100 सूत्रीय कार्यसूची का 80% से अधिक क्रियान्वयन हो चुका है, सरकार के प्रवक्ता का कथन। सहकारी ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में कुछ कड़े प्रावधान शामिल करने पड़े हैं, सहकारी मंत्री प्रतिभा रावल ने किया स्पष्ट। और वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद 50,000 से अधिक लोग अब भी लापता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।